معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ یہ پارٹ سکس ہے، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا ناول بلائنڈ مشن۔ اس کے مصنف مظہر کلیم ہیں اور اسے آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں محمد اظہر لطیف۔ اوکے، اب میں اسے ڈھونڈ لوں گا۔ تم نے چونکہ تعاون کیا ہے اس لیے میں تمہیں زندہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیکن تمہیں رسیوں سے آزادی خود حاصل کرنی ہوگی۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ مجھے معلوم ہے کہ یہاں ہیڈ کوارٹر میں انتہائی حساس اور خوفناک اسلحے کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے، اور ہم اس جزیرے میں وائرلیس چارج بم لگا کر جائیں گے اور پھر اس پورے جزیرے کو تباہ کر دیا جائے گا۔ اگر تم اس سے پہلے یہاں سے نکل گئے تو تمہاری خوش قسمتی ہوگی، ورنہ تمہیں بھی یہی مرنا ہوگا، عمران نے سرد لہجے میں کہا اور تیزی سے دروازے کی طرف مڑ گیا۔ رک جاؤ، پلیز ایسا مت کرو، مجھے رہا کر دو، براؤن نے چیختے ہوئے کہا۔ اس کے ذہن پر اس عمران کی بات سن کر موت کی سیاہ پرچھائیاں سی چھانے لگی تھی۔ ایک صورت ہے براؤن، کہ تم اس نائٹ کلب کا اصل نام بتا دو، عمران نے مڑ کر انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ وہ نائٹ سی کلب ہی کے نام سے ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں، براؤن نے رک رک کر اور چیخ کر کہا۔ ویسے وہ واقعی سچ کہہ رہا تھا، کیونکہ اس نے اس دو منزلہ عمارت پر ایک نیون سائن بھی اسی نام کا دیکھا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ وہ شاید زندگی میں پہلی بار اس میں داخل ہوا تھا۔ سوری براؤن، اس نام کا کوئی کلب لو پیک میں نہ پہلے کبھی تھا اور نہ اب ہے، عمران نے سرد لہجے میں کہا تو براؤن بے اختیار چونک پڑا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا ہے؟ میں نے تو خود وہ نیون سائن پڑھا ہے، براؤن نے اس بار لاشعوری طور پر قدرے غصیل لہجے میں کہا۔ میں نے صرف انکوائری سے ہی معلوم نہیں کیا، بلکہ لوپیک کے چیف پولیس کمشنر آفس سے بھی معلوم کیا ہے، اور اس کے ساتھ لوپیک کے مین پوسٹ آفس سے بھی معلوم کیا ہے، اور سب نے ہی اس نام کے کسی کلب کی موجودگی سے صاف انکار کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہاں کے سب سے قدیم ہوٹل سی ویو کے مینیجر سے بھی پوچھا ہے۔ یہ مینیجر گزشتہ 20 سالوں سے لوپیک کے ہوٹلوں اور کلبوں میں کام کرتا رہا ہے، اس نے بھی اس نام کے کلب کی موجودگی سے انکار کیا ہے، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا تو براؤن کے ذہن میں حیرت کے شدید دھماکے سے ہونے لگے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایسا تو ممکن ہی نہیں، براؤن نے اونچی آواز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا گیا۔ میرا خیال ہے کہ باقاعدہ ڈوج دیا گیا ہے، تمہارے وہاں پہنچنے سے پہلے نائٹ سی کلب کا نیون سائن لگا دیا گیا اور پھر تمہارے واپس جانے کے بعد اسے اتار لیا گیا، تاکہ اگر تم غداری بھی کرو تو نائٹ سی کلب ہی بتا سکو، جس کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں، عمران نے جواب دیا۔ لیکن چیف کو تو بہرحال اس کا اصل نام معلوم ہوگا، ورنہ چیف مجھے وہاں کیوں بھیجتا، براؤن نے کہا۔ ہاں، تمہاری یہ بات وضاحت طلب ہے، عمران نے سامنے رکھی ہوئی کرسی پر دوبارہ بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب، کیسی وضاحت؟ براؤن نے حیران ہو کر کہا۔ تمہارے چیف گریڈ مین نے جس حالت میں مجھے جواب دیے ہیں اس حالت میں وہ کسی بھی طرح جھوٹ نہیں بول سکتا، اور شاید تمہارے لیے بھی یہ انکشاف ہو کہ سانگر کا اصل چیف گریٹ مین نہیں تھا، بلکہ اصل چیف سر سی کالونی کوٹی نمبر 8 میں رہنے والا ڈاکٹر اینڈریو تھا۔ اس کے بارے میں صرف گریٹ مین کو ہی علم تھا، گریٹ مین اسے چیف سپر چیف کہتا تھا۔ سانگر کا تمام جال ڈاکٹر اینڈریو کا پھیلایا ہوا تھا۔ روب جزیرے پر ہیڈ کوارٹر اور داجل جزیرے میں تمام حفاظتی انتظامات اور سانگر مافیا کا منشیات کی اسمگلنگ پر کنٹرول، ان سب کا اصل سربراہ ڈاکٹر اینڈریو تھا، لیکن اس کی اصل حیثیت کا علم صرف گریٹ مین کو ہی تھا، اور ڈاکٹر اینڈریو سب کچھ گریٹ مین کے ذریعے ہی کراتا تھا۔ شوگرانی سائنسدان کے بیٹے شوکائی کا اغوا کا کیس گو جان وکٹر نے گریٹ مین کو دیا تھا، لیکن گریٹ مین نے یہ کیس ڈاکٹر اینڈریو سے اجازت لینے کے بعد ہی لیا تھا۔ پھر ڈاکٹر اینڈریو نے اس سارے کھیل کا سیٹ اپ تیار کیا، اور یہ بات بھی ڈاکٹر اینڈریو نے ہی گریٹ مین کو بتائی تھی کہ وہ اپنے کسی آدمی اور یہ بات بھی ڈاکٹر اینڈریو نے ہی گریٹ مین کو بتائی تھی کہ وہ اپنے کسی آدمی کے ذریعے تابوت جس میں شوکائی تھا اس کی کوٹھی پر بھجوا دے، تاکہ وہ اسے نائٹ سی کلب کے جنرل مینیجر رولف تک پہنچا دے۔ اس نے گریٹ مین کو بتایا تھا کہ شوکائی نائٹ سی کلب میں بحفاظت رہے گا اور کسی کو شک بھی نہ پڑے گا کہ وہ یہاں ہو سکتا ہے۔ چنانچہ گریٹ مین نے اسی کے حکم کی تعمیل کی اور تمہیں یہ ذمہ داری سونپی، इसलिए कि तुम बहरहाल तरबियत याफ्ता हो, लेकिन जब तुमने उसे फोन पर डॉक्टर एंड्रियो की हलाकत की खबर दी तो ग्रेटमैन का दिल मुसर्रत से भर गया, क्योंकि अब वो डमी चीफ नहीं बल्कि सांगर का असल चीफ बन गया था। किसी को ये मालूम ही नहीं हो सकता था कि असल चीफ हलाक हो गया है। न जाने किसने और क्यों डॉक्टर एंड्रियो को हलाक कर दिया था। बहरहाल, इसने डॉक्टर एंड्रियो की प्लानिंग के मुताबिक तुम्हें ताबूत समेत नाइट सी क्लब भिजवा दिया और तुम वहां ताबूत रॉल्फ के हवाले करके वापस आ गए। लेकिन जब मैंने ग्रेट मैन से उस रॉल्फ के बारे में पूछा या उसका नंबर मालूम किया तो मुझे ये सुनकर बेहद हैरत हुई कि उसे रॉल्फ का फोन नंबर भी मालूम नहीं था और ना ही उसने कभी उससे मुलाकात की थी। उसे सिर्फ नाइट सी क्लब और रॉल्फ के नाम का इल्म था। और मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि ग्रेट मैन जिस हालत में जवाब दे रहा था इस हालत में वो झूठ बोल ही नहीं सकता। इसलिए मैंने यही समझा कि उसे वाकई मालूम नहीं होगा, लेकिन जाहिर है क्लब कोई आम इमारत ना थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद मालूम कर लूंगा। चुनाचा मैंने उसे हलाक कर दिया। लेकिन उसकी हलाकत के बाद जब मैंने इस नाइट सी क्लब के बारे में मालूमात फोन पर हासिल करना चाही तो मुझे हर तरफ से नाकामी हुई। ग्रेट मैन ने चूंकि तुम्हारा नाम बताया था कि तुमने ताबूत वहां पहुंचाया था, इसलिए मैंने सोचा कि तुमसे मालूम करूं, लेकिन तुम भी कुछ नहीं जानते, इमरान ने सपाट लहजे में पूरी तफसील बताते हुए कहा। ये तो वाकई अजीब बात है, लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? मैंने तो खुद वहां इस नाम का नेविन साइन देखा था, ब्राउन ने हैरत भरे लहजे में कहा। उसे वाकई इस बात पर यकीन ना आ रहा था। अब मुझे एहसास हो रहा है कि डॉक्टर एंड्रयू वाकई बेमिसाल जहानत का मालिक था। उसे मालूम था कि शोगरानी एजेंट शोकाई की बरामदगी की कोशिश करेंगे, इसलिए इसने शोकाई की वापसी का रास्ता रोकने के लिए अजीब शातिराना जहानत से काम लिया है। इसने किसी भी आम सी इमारत पर नाइट सी क्लब का नेविन साइन लगवाया। अगर वो जिंदा रहता तो वो भी तुम्हें ताबूत समेत नाइट सी क्लब रॉल्फ के पास भिजवाता, और यही बात उसने ग्रेट मैन से कर रखी थी। और जब तुम वहां ताबूत पहुंचा कर वापस चले गए तो ये नेविन साइन उतार लिया गया। इस तरह नाइट सी क्लब हमेशा के लिए गायब हो गया। ज्यादा से ज्यादा तुमसे पूछा जाता तो तुम उसी क्लब का नाम लेते, पर अगर ग्रेट मैन भी कुछ बताना चाहता तो वो भी यही कुछ बता सकता था, इमरान ने कहा। ओह, हैरत अंगेज, इंतहाई हैरत अंगेज। मैं तो यही सोच ऐसा सोच भी नहीं सकता था, ब्राउन ने हैरत भरे लहजे में कहा। अब तुम बताओ कि तुम्हें हलाक कर दिया जाए या तुम जिंदा रहना चाहते हो, इमरान ने कहा। मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, मुझे मत मारो, ब्राउन ने बेख्तियार चीख कर कहा। तो इसकी एक सूरत हो सकती है कि तुम हमारे साथ मुकम्मल ताबून करो, इस आदमी इमरान ने कहा। मैं हर ताबून करूंगा, वैसे भी सांगर खत्म हो चुकी है, अब मुझे इससे सोचकर क्या मिलेगा, ब्राउन ने कहा। सोच लो, अगर तुमने कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो फिर तुम्हारा अंजाम इंतहाई इबरतनाक भी हो सकता है, इमरान ने कहा। मैं ताबून करूंगा, तुम यकीन रखो, मैं ताबून करूंगा, ब्राउन ने जल्दी जल्दी बोलते हुए कहा। तुम्हारा ताबून ये होगा कि तुम हमारे साथ शहर में घूमो और उस इमारत की निशानदही करो, इमरान ने कहा। हाँ, मैं ये काम आसानी से कर सकता हूँ, ब्राउन ने कहा। ओके, इमरान ने कहा और आगे बढ़कर वो ब्राउन के करीब आ गया। ब्राउन ने इत्मीनान का एक तवील सांस लिया, क्योंकि उसे यकीन आ गया था कि वो इसकी रस्सियां खोलने वाला है। लेकिन दूसरे लम्हे उसे उस आदमी इमरान का बाजू घूमता नजर आया और उसके साथ ही उसकी कनपट्टी पर जैसे कयामत टूट पड़ी। उसके जहन पर यकलख्त सिया पर्दा सा फैलता चला गया। शायद वो मौत का पर्दा था। इमरान के चेहरे पर संजीदगी के साथ साथ गौर फिक्र के आसार वाजह तौर पर नुमाया थे। वो इस वक्त जुआना के साथ लोपेक की एक रिहायशगाह में मौजूद थे। ये रिहायशगाह, जिसमें एक नई कार भी मौजूद थी, उसने एक प्रॉपर्टी एजेंट के जरिए कैश सिक्योरिटी देकर हासिल की थी। रॉथ जजीरे से वो रॉथ से ही हासिल करदा लॉन्च के जरिए आसानी से लोपेक पहुंच गए थे। टाइगर शदीद जख्मी था और उससे तेज नकलो हरकत नहीं हो सकती थी, और इमरान उसे यहाँ किसी अस्पताल में दाखिल नहीं कराना चाहता था, क्योंकि उसे मालूम था कि सांगर के जजीरे रॉथ की इत्तला ला महाला ब्लैक शेडो के जॉन विक्टर तक पहुंच जाएगी और वो यकीनन किसी भी तंजीम के जरिए यहाँ उनकी चेकिंग कराएगा। और जाहिर है टाइगर उनकी नजरों में आ जाता तो खुद टाइगर के लिए अपनी हिफाजत करना नामुमकिन हो जाता, इसलिए उसने टाइगर को वापस पाक एशिया भिजवा दिया था और उसकी देखभाल और मदद के लिए उसने जोसेफ को भी साथ ही भिजवा दिया था और जोसेफ को कह दिया था कि वो टाइगर को स्पेशल अस्पताल में दाखिल करा दे। इन दोनों के वापस जाने के बाद उसके साथ सिर्फ जुआना रह गया था। ब्राउन को भी इमरान अपने साथ लोपैक ले आया था ताकि वो इस इमारत की निशानदेही कर सके जहां इसने शोकाई को पहुंचाया था, और ब्राउन ने वो इमारत ट्रेस भी कर ली। इमरान को इस बात पर यकीन आ गया था कि जजीरे में रस्सियों से बंधे हुए ब्राउन ने इमारत का जो बैरूनी नक्शा बताया था वो हूबहू उसी इमारत का था, लेकिन इस इमारत में एक होस्टल लिखा हुआ था। और इमरान ने जब इस सिलसिले में मजीद इंक्वायरी की तो उसे बताया गया कि ये इमारत डॉक्टर एंड्रियो की मिल्कियत थी और उसकी जिंदगी में खाली रहती थी। कभी कभार डॉक्टर एंड्रियो यहाँ कोई फंक्शन करता था, लेकिन उसके अलावा ये बंद और खाली रहती थी। डॉक्टर एंड्रियो की हलाकत के बाद उसकी तमाम जायदाद उसकी बेटी जो वॉशिंगटन में रहती थी को मिल गई थी, और उसने लोपैक आकर अपने बाप की सारी जायदादें फरोख्त कर दी और वापस वॉशिंगटन चली गई। नए खरीदार ने इसे खरीद कर स्टूडेंट हॉस्टल बना दिया था। इसके बावजूद इमरान इस इमारत की पूरी चेकिंग कर चुका था, लेकिन इसमें कोई तहखाना या कोई खुफिया कमरा मौजूद नहीं था। इमरान ने इसके बाद ब्राउन को कुछ रकम देकर लोपैक से भिजवा दिया और ब्राउन भी वॉशिंगटन चला गया था। अब यहाँ लोपैक में इमरान और जुआना रह गए थे। इमरान और जुआना ने पूरे लोपैक शहर और उसके मुजाफाती इलाके छान मारे थे कि शायद इस बैरूनी मंजिल की हामिल कोई और इमारत भी हो, लेकिन ऐसी कोई इमारत उन्हें नजर नहीं आई। इमरान ने यहाँ के ऐसे बूढ़े लोगों को भी टटोला था जिनकी सारी जिंदगी होटलों और क्लबों में गुजरी थी, लेकिन किसी ने आज तक नाइट सी क्लब का नाम नहीं सुना। क्लबों और होटलों के बूढ़े वेटर्स के साथ साथ उसने पुलिस रिकॉर्ड्स, कारपोरेशन रिकॉर्ड्स और न जाने कौन कौन से रिकॉर्ड्स चेक कराए थे, लेकिन नाइट सी क्लब का नाम निशान उसे कहीं नहीं मिला। और इमरान बैठा सोच रहा था कि इस बार वाकई नाकामी ने इसे घेर लिया है। वो सांगर का तो खात्मा कर चुका था, लेकिन उसका मिशन मुकम्मल नहीं हो रहा था। उसे सर दावर का ख्याल था कि जब वो इन्हें अपनी नाकामी के बारे में बताएगा तो उसके बारे में वो क्या सोचेंगे। मास्टर, मेरा ख्याल है कि आप जिंदगी में पहली बार नाउम्मीद हो गए हैं, खामोश बैठे हुए जवाना ने अचानक कहा तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। नाउम्मीदी का लफ्ज मेरी लुगत में नहीं है जवाना, मैं तो मुसलसल ये सोच रहा हूँ कि हर मुश्किल का कोई ना कोई हल जरूर होता है और हर दीवार में ही रास्ता मौजूद होता है, लेकिन इस बार ना ही वो हल सामने आ रहा है और ना ही रास्ता, लेकिन बहरहाल ऐसा होगा जरूर, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मास्टर, फर्ज करें अगर वो शोगरानी साइंसदान ये फार्मूला वाकई मुजरिमों के हवाले करना चाहें तो किसके हवाले करेंगे। सांगर तो खत्म हो गई, जुआना ने कहा। जाहिर है ब्लैक शेडो का चीफ उसे वसूल करेगा, उसे भी इत्तला मिल चुकी होगी कि सांगर खत्म हो चुकी है। वैसे भी सांगर के मिशन के पीछे ब्लैक शेडो ही थी, इमरान ने कहा, लेकिन फार्मूले के एवज जब उसे शोकाई को देना होगा तो फिर वो उसे कहाँ से ले आएगा। मास्टर, जुआना ने कहा, जाहिर है वो नहीं ला सकेगा, क्योंकि मुझे यकीन है कि जॉन विक्टर का लिंक ग्रेट मैन के साथ था, डॉक्टर एंड्रियो के साथ नहीं, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। मास्टर, हमें वॉशिंगटन जाकर डॉक्टर एंड्रियो की बेटी से मालूम करना चाहिए कि वो यहाँ से अपने बाप का सामान ले गई होगी, शायद इसमें उसी में से कोई ऐसा क्लू मिल जाए जिससे हम शोकाई को तलाश कर सकें, जुआना ने कहा। ये काम भी हो चुका है, वाशिंगटन में वाकेश सीक्रेट सर्विस के फॉरेन एजेंट ने मेरी दरख्वास्त पर डॉक्टर एंड्रियो की बेटी से मुलाकात की है और उसने बताया है कि डॉक्टर का जाती सामान सिवाय किताबों के और कुछ ना था, वो इन किताबों को वहीं छोड़ आई थी। वैसे भी हमें किताबों से क्या मिल सकता था, इमरान ने जवाब दिया। मास्टर, हम नाइट सी क्लब को ट्रेस करते रहे हैं, हमें इस राल्फ को तलाश करना चाहिए जिसने शोकाई को वसूल किया था, जुआना ने कहा। ये काम भी हो चुका है, ब्राउन से मैंने रॉल्फ का हुलिया और कदो कामत की तफसील मालूम कर ली थी। उसके बाद यहाँ एक पार्टी ने उसे तलाश किया, लेकिन इस कदो कामत के हजारों नहीं तो सैकड़ों आदमी मिल सकते हैं, लेकिन इस हुलिया का कोई आदमी ट्रेस नहीं हो सकता, शायद वो आदमी मेकअप में था, इमरान ने जवाब दिया तो जवाना ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। फिर तो सिवाय इसके अब और क्या हो सकता है कि मास्टर अब हम भी वापस चले जाएं, जवाना ने कहा तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। अभी तुम मुझे नाउम्मीद कह रहे थे और अब तुम खुद नाउम्मीद हो चुके हो, इमरान ने कहा। और हो भी क्या सकता है मास्टर, जवाना ने होंठ भींचते हुए कहा। बहुत कुछ हो सकता है, इमरान ने तवील सांस लेते हुए कहा। गोइस ने ये बात तो कह दी थी, लेकिन हकीकत यही थी कि उसे खुद भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वो अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था, ऐसी बेचैनी जिसका उसे पहले कभी तजुर्बा नहीं हुआ था। शायद बेचैनी इसीलिए थी कि इससे पहले कभी इसके साथ ऐसा नहीं हुआ था कि उसे आगे बढ़ने का हर रास्ता बंद मिला हो। उसने आंखें बंद कर ली, लेकिन कोई बात उसकी समझ में न आई तो उसने एक तवील सांस लेकर आंखें खोली और उठकर खड़ा हो गया। क्या हुआ मास्टर? जोना ने चौंक कर कहा। अम्मा बी का कहना है कि जब इंसान अपनी तमाम कोशिशों में नाकाम हो जाए तो फिर उसे अल्लाह ताला से रुजू करना चाहिए। यकीनन रास्ता मिल जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला हर शय पर कादिर है, सिर्फ इंसान बेबस और मजबूर है। और मैंने अपने तौर पर तमाम कोशिशें कर ली हैं, इसलिए अब अम्मा बी के मुताबिक मैं अल्लाह ताला से रुजू करने जा रहा हूँ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वजू कर लेने के बाद वो कालीन पर ही सजदे में गिर गया और गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला से दुआ मांगने लगा। काफी देर तक वो सजदे में पड़ा रहा और दुआएं मांगता रहा, अल्लाह ताला की हम्द व सना करता रहा। फिर अचानक उसे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी बेचैनी को यकलख्त सुकून और इत्मीनान में बदल दिया हो, और उसके साथ ही उसने सर उठाया और उठकर बैठ गया। उसके चेहरे पर गहरा इत्मीनान मौजूद था। उसने मुंह पर हाथ फेरे और उठकर वापस आकर कुर्सी पर बैठ गया। जुआना खामोश बैठा हुआ था। क्या हुआ मास्टर, कोई रास्ता मिला? जुआना ने कहा। हाँ, अल्लाह ताला का करम हो गया है, वो वाकई अपने बंदों पर बेहद रहीम व करीम है। उसके सामने खुलूस के साथ दामन फैलाने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता, इमरान ने जवाब दिया। क्या रास्ता है? जुआना ने हैरत भरे लहजे में कहा। अभी मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझ पर इत्मीनान और सुकून की बारिश हुई है, और यही इस बात की निशानी है कि अल्लाह ताला ने मेरी दुआएं कबूल कर ली हैं। अल्लाह ताला जल्द ही कोई ना कोई रास्ता भी सामने ले आएगा, इमरान ने कहा। और इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, फोन की घंटी बज उठी तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, माइकल बोल रहा हूँ, इमरान ने अपने नए नाम और बदले हुए लहजे में कहा। मिस्टर माइकल, मैं ब्राउन बोल रहा हूँ, वाशिंगटन से। दूसरी तरफ से ब्राउन की आवाज सुनाई दी तो इमरान चौंक पड़ा। कोई खास बात जो फोन किया है? इमरान ने कहा। वो समझ गया था क्योंकि ब्राउन यहाँ रह चुका है, इसलिए उसे यहाँ के फोन नंबर मालूम थे। मिस्टर माइकल, आपने जिस तरह अपने वादे के मुताबिक मुझे जिंदा छोड़ दिया था और फिर मुझे खासी भारी रकम देकर वाशिंगटन भिजवाया, इससे मेरे दिल पर आपकी अजमत का नक्श बेहद गहरा पड़ा है। मैं यहाँ वाशिंगटन आकर भी नाइट सी क्लब और राल्फ के बारे में मुसलसल सोचता रहा हूँ, लेकिन कोई नई बात समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले अचानक मेरे जहन में एक ख्याल बिजली के कूंदे की तरह आया है। मुझे याद आ गया है कि जिस राल्फ ने ताबूत मुझसे हासिल किया था, उसकी बाएं हाथ की 6 उंगलियां थीं। ये बात मेरे जहन से बिल्कुल ही निकल गई थी। और उसके साथ साथ मुझे ये भी याद आ गया कि एक बार चीफ ब्रेडमैन ने मुझे मुसर्रत भरे लहजे में बताया था कि लोपेक का सबसे खतरनाक गैंगस्टर सांगर में शामिल हो गया है और दाजल जजीरे पर मुझसे मिलने आ रहा है। मैं ग्रेटमैन के साथ दाजल जजीरे पर गया था। वहां ये गैंगस्टर अपने 4 साथियों समेत आया था। इसका नाम सलवान था और मिस्टर माइकल, इस सलवान की भी बाएं हाथ की 6 उंगलियां थीं। इसका कदोकामत भी वही था जो राल्फ का था, अलबत्ता इसका चेहरा और कदोकाल दूसरे थे। जैसे ही मुझे ये ख्याल आया तो मैंने सोचा कि आपको इत्तला दे दूं, शायद आपका काम हो जाए। दूसरी तरफ से ब्राउन ने तेज तेज लहजे में कहा। इसका कोई और अता पता? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। जी नहीं, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं मालूम, ब्राउन ने कहा। बेहद शुक्रिया ब्राउन, ये सब कुछ बता रहा है कि तुम्हारा जमीर मुर्दा नहीं हुआ, अभी जिंदा है। कोशिश करके जराइम की दुनिया से बाहर निकल आओ, इमरान ने कहा। मैंने भी यही सोचा है मिस्टर माइकल, आपने जिस अंदाज में अपने वादे की पाबंदी की है उसने मुझे बेहद मुतासिर किया है, इसलिए मैं अब जराइम के करीब भी नहीं जाऊंगा, ब्राउन ने कहा। ओके, विश यू गुड लक, इमरान ने कहा। और उसके साथ ही उसने क्रेडिट दबाया और फिर टोन आने पर उसने तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। उसकी आंखों में तेज चमक उभर आई थी। ब्लू मून क्लब, रब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। कार्ल से बात कराओ, मैं माइकल बोल रहा हूँ, लॉर्ड माइकल, इमरान ने कहा। यस सर, होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, कार्ल बोल रहा हूँ, चंद लम्हों बाद एक और मर्दाना आवाज सुनाई दी। ये वही आदमी था जिसके जरिए इमरान ने लोपेक में राल्फ के बारे में इंक्वायरी कराई थी और उसे उसके एवज भारी रकम अदा की गई थी। माइकल बोल रहा हूँ लॉर्ड माइकल, इमरान ने कहा। यस लॉर्ड, फरमाइए, उसी तरफ से कहा गया। हमें इत्तला मिली है कि यहाँ एक साहब है सलवान, लोपैक के बड़े आदमी हैं। क्या आप उन्हें जानते हैं? इमरान ने दानिश्ता सलवान को गैंगस्टर कहने के बजाय बड़ा आदमी कहा था, क्योंकि कार्ल भी उसी लाइन का आदमी था। यस लॉर्ड माइकल, वो तो लोपैक के किंग हैं, लेकिन वो तो बेहद खुफिया रहते हैं। आप तक कैसे उनके बारे में इत्तला पहुंच गई? कार्ल ने कहा। ओह, फिर तो वो हमारे ढब के आदमी हैं। क्या उनसे मुलाकात की कोई सूरत हो सकती है? इमरान ने कहा। सॉरी लॉर्ड माइकल, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। वो किसी से नहीं मिलते, कार्ल ने साफ गोई से जवाब देते हुए कहा। चलो, फोन पर तो मुलाकात हो सकती है, इमरान ने कहा। हाँ शायद, मगर, कार्ल ने कदर कदरे उलझे हुए लहजे में कहा, देखो मिस्टर कार्ल, मैंने आपको मिस्टर राल्फ की तलाश के लिए भारी रकम दी, जबकि आप मिस्टर राल्फ को तलाश नहीं कर सके। इसके बावजूद मैंने आपसे रकम की वापसी का मुतालबा नहीं किया, इसलिए अब आप सिर्फ सलवान का फोन नंबर बताने का कोई मुआवजा क्लेम नहीं करेंगे, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। ओह अच्छा, ठीक है लॉर्ड, फोन नंबर नोट करें, दूसरी तरफ से कहा गया और फिर फोन नंबर बता दिया गया। क्या इस नंबर पर इनसे बराह रास्त बात हो सकती है? इमरान ने कहा। इनकी सेक्रेटरी बात करेगी। अभी आपकी किस्मत कि आपकी बात बराह रास्त किंग सलवान से हो सकती है या नहीं, कार्ल ने कहा। ये फोन नंबर कहाँ नस्ब है? इमरान ने पूछा। ये किसी को भी नहीं मालूम, इसलिए तो मैंने कहा था कि किंग खुफिया रहते हैं, सिर्फ उनका हुक्म और नाम चलता है, दूसरी तरफ से कहा गया। नंबर वाकई यही है या ये नंबर भी मशकूक है? इमरान ने कहा। नंबर यही है, इस नंबर पर वो अपने आदमियों से बात करता है, लेकिन वो सिर्फ अपने आदमियों से बात करता है, वरना इनकार कर देता है, कार्ल ने जवाब देते हुए कहा, और उसके लहजे से ही इमरान समझ गया कि वो सच बोल रहा है। ओके, शुक्रिया, इमरान ने कहा और क्रेडिल दबाकर उसने टोन आने पर वही नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, मर्दाना आवाज सुनाई दी, लहजा बेहद सख्त और सर्द था। मैं लॉर्ड माइकल बोल रहा हूँ, किंग सलवान से बात करवाओ, इमरान ने भी लहजे को भारी सर्द और सख्त बनाते हुए कहा। तुम महज एक मामूली से लॉर्ड हो गए, जबकि वो किंग सलवान है, समझे? और अब फोन ना करना, चूंकि तुमने पहली बार फोन किया है इसलिए तुम्हें सिर्फ वार्निंग दी जा रही है, वरना अब तक किंग के जल्लाद तुम्हारी गर्दन तक पहुंच चुके होते, दूसरी तरफ से इंतहाई सख्त और तहकीर आमेज लहजे में कहा गया। और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। चलो, ये तो तय हो गया कि किंग सलमान वाकई कोई आदमी है और ये फोन नंबर भी उसी का है, इमरान ने क्रेडिल दबाकर मुस्कुराते हुए कहा। क्या हुआ मास्टर, कौन है ये किंग सलवान? जुआना ने पूछा, जो अब तक खामोश बैठा था। चूंकि पहले ब्राउन से और फिर कार्ल से बात करते हुए इमरान ने लाउडर का बटन प्रेस नहीं किया था। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत कर दी है और उसने एक रास्ता दिखा दिया है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और साथ ही ब्राउन की बताई हुई तफसील बता दी। ओह वाकई मास्टर, ये तो कमाल हो गया, वरना हम तो टक्करे मार कर रह गए थे, जुआना ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, अम्मा बी का कहना दुरुस्त है, जब इंसान अपनी कोशिशों में नाकाम हो जाए तो उसे अल्लाह ताला से रुजू करना चाहिए, वो बड़ा कारसाज है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और उसके साथ ही उसने क्रेडिट को छोड़ा और इंक्वायरी के नंबर प्रेस कर दिए। इंक्वायरी प्लीज, रब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। चीफ चीफ पुलिस कमिश्नर स्टाफ ऑफिस से असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर लाइल बोल रहा हूँ, इमरान ने भारी और सख्त लहजे में कहा। यस सर, हुकुम सर, दूसरी तरफ से कदरे बौखलाए हुए लहजे में कहा गया। क्योंकि लोपैक में असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर इतना बड़ा ओहदा था कि उसका नाम सुनकर ही लोग खौफ खा जाते थे। इतना अहम सरकारी मामला है, मैं आपको एक नंबर बता रहा हूँ, आपने दुरुस्त तौर पर बताना है कि ये नंबर कहाँ है, पूरी तरह चेक करके बताना है, क्योंकि ये अहम इंतहाई अहम तरीन सरकारी मामला है, इमरान ने पहले से ज्यादा भारी लहजे में कहा। यस सर, बताएं, दूसरी तरफ से कहा गया और इमरान ने कार्ल का बताया हुआ नंबर दोहरा दिया। यस सर, मैं चेक करती हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया। नंबर दोबारा दोहराओ, इमरान ने कहा, तो लड़की ने इमरान का बताया हुआ नंबर दोहरा दिया। ठीक है, अब इंतहाई हाजिर दिमागी से उसे चेक करना, तुम्हारी मामूली सी गलती इंतहाई भयानक नतीजे निकाल सकती है, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया और फिर लाइन पर खामोशी तारी हो गई। हेलो सर, थोड़ी देर बाद लड़की की आवाज सुनाई दी। यस, इमरान ने जवाब दिया। सर, यह नंबर क्लू लैंड की कॉलोनी की कोठी नंबर 101 में नस्ब है और डॉक्टर हैरी के नाम पर है, लड़की ने जवाब देते हुए कहा। अच्छी तरह चेक कर लिया है, कोई गलती तो नहीं हुई, इमरान ने कहा। कोई गलती नहीं है सर, मैंने 4 बार चेक किया है, दूसरी तरफ से इस बार बाएतमाद लहजे में कहा गया। अब ये कहने की जरूरत तो नहीं कि ये सरकारी राज है, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। मैं समझती हूँ सर, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। चलो उठो जुआना, अब इस सलमान से भी दो दो हाथ कर लें, इमरान ने कहा। तो जुआना इस बात में सर हिलाता हुआ एक झटके से उठ खड़ा हुआ। ब्लैक शेडो का चीफ जॉन विक्टर अपने ऑफिस में बैठा एक फाइल के मुताले में मसरूफ था। के पास पड़े हुए टेलीफोन की घंटी बज उठी तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया। यस, जॉन विक्टर ने तेज और सर्द लहजे में कहा। लोपैक से किंग सलमान आपसे बात करना चाहते हैं, दूसरी तरफ से इसके पर्सनल सेक्रेटरी की मुअद्दबाना आवाज सुनाई दी और जॉन विक्टर बेख्तियार उछल पड़ा। ओह अच्छा, कराओ बात, जॉन विक्टर ने कहा। हेलो, किंग सलमान बोल रहा हूँ, चीफ ऑफ सांगर, चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से एक भारी सी आवाज सुनाई दी और जॉन विक्टर बेख्तियार उछल पड़ा। चीफ ऑफ सांगर, क्या मतलब हुआ इस बात का, कौन हो तुम और ये क्या कह रहे हो, जॉन विक्टर ने खासे गुस्सीले लहजे में कहा। उसे हकीकतन इस आदमी की बात करने के अंदाज पर बहुत गुस्सा आया था। मुझे मालूम है कि आप एक बड़ी सरकारी एजेंसी के चीफ हैं और आपका दोस्त ग्रेटमैन सांगर का चीफ था, दूसरी तरफ से किंग सलमान ने कहा। तो जॉन विक्टर एक बार फिर उछल पड़ा। था का क्या मतलब हुआ, जॉन विक्टर ने बेसाख्ता कहा। इसलिए कि उसे हलाक कर दिया गया है और आप ये सुन लें कि सांगर का असल चीफ डॉक्टर एंड्रियो था जबकि ग्रेटमैन सिर्फ चीफ था, लेकिन डॉक्टर एंड्रियो ने उसे ऑल इन ऑल जाहिर किया हुआ था जबकि तमाम कंट्रोल दर हकीकत डॉक्टर एंड्रियो के हाथ में था। ग्रेट मैन सिर्फ डमी चीफ था और डॉक्टर एंड्रियो को दस्ते रास्त था। डॉक्टर एंड्रियो इंतहाई जहीन आदमी था। आपने जब सांगर माफिया को शोगरान के साइंसदान के बेटे डॉक्टर शोकाई को अगवा करके उसके बदले में फार्मूला हासिल करने का मिशन दिया तो ग्रेट मैन ने डॉक्टर एंड्रियो की इजाजत से इसकी हामी भर ली। फिर डॉक्टर एंड्रियो ने खुद तमाम इंतजाम किए। डॉक्टर एंड्रियो को मालूम था कि शुगरानी एजेंट ला महाला अगवा कुनिंदा को वापस हासिल करने की कोशिश करेंगे। उनका रास्ता रोकने के लिए डॉक्टर एंड्रियो ने एक प्लान तरतीब दिया। उन्होंने मेरा नाम रॉल्फ रखा और मुझे खाली कोठी पर नाइट सी क्लब का नेव इंसाइन बोर्ड लगाने का हुक्म दिया और साथ ही ये कहा कि जो भी अगवा कुनिंदा को लेकर मेरे पास आए उस पर मैं यही जाहिर करूंगा कि मेरा नाम रॉल्फ है और मैं नाइट सी क्लब का जनरल मैनेजर और मालिक हूँ। उन्होंने मेरे चेहरे पर एक मुख्तलिफ मेकअप भी कर दिया था। डॉक्टर एंड्रियो ने मुगवी को यहाँ लाने के लिए जो इंतजाम किए थे उनके मुताबिक मुगवी को बेहोश करके और मुर्दा जाहिर करके ताबूत में यहाँ लाना था, तो नाचा ऐसा ही हुआ और वो ताबूत मेरे पास इस इमारत में लाया गया। मैंने बतौर राल्फ उसे वसूल किया। फिर मैंने डॉक्टर एंड्रियो के हुक्म पर वो नेविन साइन हटा दिया, इमारत खाली कर दी गई और मैंने अपना मेकअप भी वॉश कर दिया और अपने खुफिया अड्डे पर मुंतकिल हो गया। फिर मुझे इत्तला मिली कि डॉक्टर एंड्रियो को उसके एक मुहाफिज ने रात को गोली मारकर हलाक कर दिया। इस तरह ग्रेट मैन डमी चीफ के बजाय असली चीफ बन गया, लेकिन फिर भी मुखबिर मेरे पास ही रहा। इसके बाद अचानक मुझे इत्तला मिली कि सांगर का हेडक्वार्टर रॉत जजीरा यकलख्त इंतहाई खौफनाक धमाकों से मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है और ग्रेट मैन समेत वहां मौजूद हर आदमी हलाक हो गया। वहां सांगर के मनुष्यात के बड़े बड़े स्टोर्स थे, वो सब स्टोर्स भी तबाह हो गए और मनुष्यात समंदर में गर्क होकर बेकार हो गई। जो बची वो हुकूमत ने जब्त कर ली और यकीनन ये तबाही शोगरानी एजेंटों ने ही मचाई होगी और यकीनन मुगवी को वापस ले जाने के लिए ये सब कुछ कर रहे होंगे। लेकिन जाहिर है जब ग्रेट मैन को भी ये मालूम ना था कि मुगवी कहाँ है तो वो किसी को क्या बता सकता था। बहरहाल ग्रेट मैन की हलाकत के बाद अब सांगर का चीफ मैं हूँ और मैंने आपको फोन इसलिए किया है कि आपको इत्तला दे दूं कि मुख भी मेरे पास है और अब मैं शोगरानी साइंसदान से फार्मूला आपके लिए हासिल करना चाहता हूं। अलबत्ता जब आप कहेंगे तो मैं मुख भी को छोड़ दूंगा या आपके कहने पर उसे हलाक कर दूंगा, जैसे आप कहें। लेकिन आपको मुझे चीफ तस्लीम करना होगा, किंग सलवान ने तफसील से बात करते हुए कहा। और जॉन विक्टर की हालत देखने वाली हो रही थी। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे वो कोई अलिफ लैलवी कहानी सुन रहा हो। ओह, तो ये बात है। मुझे सांगर की अंदरूनी मालूमात से कोई ताल्लुक नहीं। ग्रेट मैन मेरा दोस्त था और फिर मुझे सांगर की ताकत और उसके हेडक्वार्टर के बारे में भी बखूबी इल्म था, इसलिए मैंने हुकूमत से खुसूसी सिफारिश करके ये मिशन सांगर को दिलवाया था। अब तुम चीफ हो तो ठीक है, तुम ये काम करो। हुकूमत से सांगर को जो मुआवजा दिया जाना था उसका निस्फ तो आधा निस्फ तो ग्रेट मैन वसूल कर चुका था, बाकी निस्फ तुम्हें दे दिया जाएगा, जॉन विक्टर ने कहा। मुझे मुआवजे की जरूरत नहीं है, ये मुआवजा मेरी तरफ से आप रख लें। मुझे कोई एतराज नहीं, मेरी डिमांड सिर्फ इतनी है कि आप सांगर की सरपरस्ती करते रहें, किंग सलवान ने कहा। ठीक है, ऐसा ही होगा, लेकिन वो लोग अब कहाँ हैं जिन्होंने जजीरे रौत पर सांगर के हेडक्वार्टर को तबाह किया है, जॉन विक्टर ने कहा। उनके बारे में अभी तक कुछ मालूम नहीं हो सका, बहरहाल चोगरानी एजेंट ही होंगे, लेकिन वो मुझ तक किसी सूरत नहीं पहुंच सकते और यही हमारा प्लस पॉइंट है, किंग सलवान ने कहा। हाँ, लेकिन ये सुन लो कि ये शोग्रानी एजेंट नहीं है, इस चौकाई को बरामद करने के लिए पाकेशियाई एजेंट लोपैक में काम कर रहे हैं। ये हेडक्वार्टर भी यकीनन उन्होंने ही तबाह किया होगा, लेकिन जो कुछ तुमने बताया है उसके बाद मैं पूरी तरह मुतमईन हूँ कि वो लोग चाहे कुछ भी क्यों ना कर ले, वो तुम तक नहीं पहुँच सकते। अब मैं शोग्रानी साइंसदान से फौरी राब्ता करूंगा, फिर तुम्हें हतमी इत्तला दूंगा। तुम्हारा फोन नंबर क्या है, जॉन विक्टर ने कहा, तो दूसरी तरफ से फोन नंबर बता दिया गया। ठीक है, जॉन विक्टर ने कहा और रिसीवर रख दिया, और क्रिस ने सामने मौजूद कागज पर फोन नंबर लिखा और इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर उसने ये नंबर और किंग सलवान का नाम अपनी पीए को लिखवा दिया ताकि वो इसके हुक्म पर इसका किंग सलवान से रब्ता करा सके। ये पाकेशियाई एजेंट वाकई बेहद खतरनाक है, जिस तरह इस डॉक्टर एंड्रियो ने प्लानिंग की वो वाकई लाजवाब है। अब ये पाकेशियाई एजेंट लाख टक्करे मारे ये किसी सूरत मुगवी तक नहीं पहुंच सकते, और यही हमारी असल कामयाबी होगी, जॉन विक्टर ने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर सामने रखी हुई फाइल की तरफ मुतवज्जा हो गया। उसके चेहरे पर इसने इसलिए इत्मीनान के तासुरात थे कि ग्रेट मैन की हलाकत और सांगर के हेडक्वार्टर की तबाही के बावजूद असल मिशन उनके हक में ही था। कार तेजी से लोपैक के मुजाफात में वाकई क्लूलैंड कॉलोनी में दाखिल हुई। ये खासी कदीम कॉलोनी थी क्योंकि यहाँ मौजूद कोठियों के डिजाइन और इनके तर्ज तामीर देखने से ही ये खासी पुरानी लगती थी, अलबत्ता सड़कें खासी फराख और बेहतर हालत में थीं। कार की ड्राइविंग सीट पर इमरान था जबकि साइड सीट पर जुआना था। इमरान ने अपनी रिहाइश गाह से रवाना होने से कबल लोपैक के तफसीली नक्शे का अच्छी तरह जायजा लिया था, इसलिए वो इत्मीनान से ड्राइविंग करता हुआ यहाँ पहुंच गया था। किंग सलवान के फोन की तनसीब की जगह क्लूलैंड की कॉलोनी कोठी नंबर 101 बताई गई थी, इसलिए इमरान इधर आया था, पर फिर थोड़ी देर बाद उसने मतलूबा कोठी को ट्रेस कर लिया। ये खासी बड़ी कोठी थी, गेट के सुतून पर नेम प्लेट भी मौजूद थी, लेकिन इस पर लिखे हुए हरूफ इब्तदाई जमाने की वजह से मिट चुके थे। यहाँ रहता है किंग सलवान, जुआना ने ऐसे लहजे में कहा जैसे उसे यकीन ना रहा हो। पुराने दौर के किंग महलों में रहा करते थे, मौजूदा दौर के किंग्स ऐसे टूटे फूटे मकानों पर ही इक्तफा करते हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, तो जुआना भी अख्तियार हंस पड़ा। इमरान ने एक चक्कर लगाया और फिर चंद लम्हों बाद उसकी कार एक पार्किंग में जाकर रुक गई। वहां चार कारें पहले से ही मौजूद थी। इमरान और जुआना नीचे उतरे और फिर कार लॉक करके वो वापस अपनी मतलूबा कोठी की तरफ बढ़ गए। ये किंग सलवान का मरकज है तो लाजमन यहाँ खुफिया हिफाजती इंतजाम होंगे, इमरान ने कहा। होते रहे मास्टर, हमने बहरहाल अंदर तो जाना है, जुआना ने कहा। हम अगली तरफ से जाएंगे और गटर के रास्ते, इमरान ने कहा और साइड सड़क पर मुड़ गया। जुआना इसके पीछे था। कोठी के अकब में भी सड़क थी और फिर जैसे ही वो कोठी के अकब में पहुंचे इमरान के चेहरे पर मुसरत के तासुरात उभर आए, क्योंकि अगली तरफ दीवार के साथ ही एक पुराना दरख्त मौजूद था जिसकी शाखें कोठी की ऊंची दीवार पर अंदर को फैली हुई थी। मैं अंदर जाकर अगली दरवाजा खोलता हूँ मास्टर, जॉना ने कहा। नहीं, तुम यहीं रुको और ख्याल रखो, मैं अंदर जाकर दरवाजा खोलता हूँ, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। और उसके साथ ही उसने एक नजर इधर उधर देखा और दूसरे लम्हे वो किसी बंदर किसी फुर्ती से दरख्त के तने पर पैर रखता हुआ ऊपर चढ़ता चला गया। फिर ऊपर पहुंचकर उसने पैरा ड्रॉपिंग के अंदाज में अंदर छलांग लगा दी और जैसे ही उसके पैर जमीन से लगे वो चंद कदम मखसूस अंदाज में दौड़ने के बाद रुक गया। इसके गिरने से जो धमाका हुआ था वो खासा जोरदार था, इसलिए इमरान तेजी से एक झाड़ी की ओट में हो गया। लेकिन जब कुछ देर तक उस धमाके का कोई रद्द अमल जाहिर ना हुआ तो इमरान झाड़ी की ओर से निकला और तेज तेज कदम उठाता दीवार के कोने में मौजूद दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाजा खोला और बाहर जाकर तो जुआना भी चंद लम्हों बाद अंदर आ गया। इमरान ने दरवाजा दोबारा बंद कर दिया और फिर वो दोनों मुहतात कदमों से चलते हुए साइड की चौड़ी गली से होकर फ्रंट साइड की तरफ बढ़ते चले गए। फ्रंट पर कोई आदमी मौजूद नहीं था। कोठी पर इस तरह की खामोशी थी कि जैसे कोठी खाली हो, लेकिन थोड़ी देर बाद वो एक कमरे के खुले दरवाजे के करीब रुक गए। अंदर से एक आदमी के बड़बड़ाने की आवाजें आ रही थीं। इमरान ने सर आगे करके अंदर झांका तो वो बेख्तियार मुस्कुरा दिया, क्योंकि वह कमरे के वस्त में मौजूद बेड पर एक आदमी लेटा हुआ था। बेड के नीचे चार पांच शराब की खाली बोतलें पड़ी थीं और वो आदमी बेड पर लेटा हुआ था और मुसलसल बेमाने अंदाज में बड़बड़ा रहा था। उसकी बड़बड़ाहट बता रही थी कि वो नशे में धुत पड़ा हुआ है। इमरान ने जुआना को सरगोशी में पूरी कोठी की चेकिंग के लिए कहा तो जुआना सर हिलाता हुआ तेजी से आगे बढ़ गया। जबकि इमरान उस कमरे में दाखिल हुआ तो इस वक्त तक इस आदमी की बड़बड़ाहट बंद हो चुकी थी। उसकी मशीन गन बेड के साइड पर रखी हुई थी और वो आदमी अपने लिबास और अंदाज से कोठी का चौकीदार लगता था। कमरा भी सादा सा था, इसमें एक बेड और एक सोफा सेट पड़ा था और एक साइड पर रैक था जिसमें सस्ती शराब की बोतलें काफी तादाद में मौजूद थी। इमरान खामोश खड़ा हुआ था, उसे जुआना का इंतजार था और फिर थोड़ी देर बाद जुआना वापस आ गया। उसने इस अंदाज में सर हिलाया जिससे इमरान समझ गया कि कोठी में इस चौकीदार के अलावा और कोई आदमी मौजूद नहीं। रस्सी तलाश करके ले आओ, इसे बांधना है, इमरान ने कहा तो जुआना सर हिलाता हुआ मुड़ा और एक बार फिर कमरे से बाहर चला गया। इमरान होंठ भींचे हुए था, उसे दरअसल सिचुएशन की समझ नहीं आ रही थी क्योंकि इंक्वायरी ऑपरेटर ने जिस अंदाज में यहाँ की निशानदेही की थी उससे लगता था कि वो दुरुस्त कह रही है, लेकिन यहाँ कोठी खाली पड़ी थी। थोड़ी देर बाद वो जुआना वापस आया तो उसके हाथ में रस्सी का एक बंडल मौजूद था। फिर इमरान और जुआना ने मिलकर इस चौकीदार को उठाकर एक कुर्सी पर बिठाया और उसे रस्सी से बांध दिया। चौकीदार की गर्दन हल्की हुई थी और आंखें बंद थी, वो वाकई नशे में धुत पड़ा था। यहाँ तुमने फोन देखा है कहीं, इमरान ने कहा। यस मास्टर, साथ ही एक कमरे में मौजूद है, जुआना ने कहा। तुम उसे होश में ले आओ, लेकिन नाक और मुंह बंद करके नहीं, हल्के 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 थप्पड़ मारकर, क्योंकि जिस तरह ये नशे में धुत है अगर तुमने इसकी नाक और मुंह बंद कर दिया तो ये हलाक हो जाएगा। मैं इस खून को चेक करके आता हूँ, इमरान ने कहा। यस मास्टर, आप बेफिक्र रहें, ऐसे नशेबाजों को नशा मुझे उतारना आता है, जुआना ने जवाब दिया तो इमरान सर हिलाता हुआ बाहर निकल गया। थोड़े से फासले पर एक कमरा था जिसकी मेज पर फोन मौजूद था। इमरान ने आगे बढ़कर फोन का रिसीवर उठाया तो फोन में टोन मौजूद थी। उसने रिसीवर रखा और फोन के निचले हिस्से में मौजूद नंबर की चिट को गौर से देखा और फिर एक तवील सांस लिया, क्योंकि नंबर वही था जिस पर इमरान ने फोन किया था। इसका मतलब था कि इंक्वायरी ऑपरेटर ने दुरुस्त नंबर बताया था। इसी लम्हे इसके कानों में दूर से चीखने की आवाज पड़ी और वो समझ गया कि जुआना इस चौकीदार को होश में लाने की कार्रवाई में मसरूफ है। फोन नंबर यही है, अब इस चौकीदार से ही मालूम करना होगा कि असल चक्कर क्या है। इसलिए इमरान इस कमरे से निकलकर वापस उस कमरे में पहुंच गया जहां वो चौकीदार और जुआना मौजूद थे। चौकीदार की आंखें खुली हुई थी, बल्कि एक लिहाज से फटी हुई दिखाई दे रही थी। चेहरे पर तकलीफ के तासुरात के साथ साथ जुआना की उंगलियों के निशानात नुमाया नजर आ रहे थे। तुम कौन हो, ये क्या है, इस चौकीदार ने नशे से लड़खड़ाते हुए लहजे में कहा। लेकिन दूसरे लम्हे उसके हलक से निकलने वाली चीख से कमरा गूंज उठा। इसका फिक्रा मुकम्मल ही ना हुआ था कि जुआना का जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा। पूरी तरह होश में आ जाओ वरना, जुआना ने गुर्राते हुए लहजे में कहा। मैं होश में हूँ, इस चौकीदार ने हिजयानी अंदाज में चीखते हुए कहा। क्या नाम है तुम्हारा? इमरान ने उससे पूछा। मेरा नाम कोहन है, चौकीदार ने जवाब दिया। वो वाकई पूरी तरह होश में आ चुका था। ये कोठी किसकी है? इमरान ने पूछा। डॉक्टर हैरी की। डॉक्टर हैरी वाशिंगटन में रहता है, कभी कभार यहाँ आता है, मैं यहाँ मुस्तकिल रहता हूँ। तुम कौन हो? तुमने मुझे क्यों बांधा? कोहन ने मुसलसल बोलते हुए कहा। यहाँ जो फोन मौजूद है उसे कौन अटेंड करता है? इमरान ने कहा। मैं करता हूँ और कौन करता है, कोहन ने जवाब दिया। जुआना तुम कोठी से बाहर जाओ और किसी करीबी फोन बूथ से यहाँ का नंबर डायल करो, इमरान ने जुआना से कहा और साथ ही नंबर बता दिया। तो जुआना मुड़ा और तेज तेज कदम उठाता कमरे से बाहर चला गया। किंग सलमान को तुम जानते हो? इमरान ने कोहन से पूछा। सिर्फ नाम सुना हुआ है, मैं यहाँ आने से पहले स्टार लाइट क्लब में था, तब मैंने सलमान का नाम सुना था। कहा जाता है कि वो बहुत बड़ा बदमाश है, कोहन ने जवाब दिया। तुमने क्लब की नौकरी क्यों छोड़ी? इमरान ने पूछा। वहाँ तनख्वाह कम मिलती थी, डॉक्टर हैरी वहाँ आता था, मैं उसे सलाम करता था तो वो खुश होकर मुझे अच्छी टिप दे देता था। फिर उसने मुझे अपनी कोठी की चौकीदारी की ऑफर की, क्योंकि वो मुस्तकिल वॉशिंगटन में शिफ्ट हो रहा था। उसने मुझे क्लब से 10 गुना ज्यादा तनख्वाह की ऑफर की, साथ ही खाना पीना शराब जिस कदर में चाहूं मुफ्त में, इसलिए मैं यहाँ आ गया। मुझे यहाँ आए हुए 4 साल हो गए हैं, कोहन ने तफसील से जवाब देते हुए कहा। डॉक्टर हैरी का हुलिया बताओ, इमरान ने पूछा तो कोहन ने तफसील से बता दिया। लेकिन ये हुलिया किंग सलमान से यकसर मुख्तलिफ था। उसी लम्हे नजदीकी कमरे से फोन की घंटी बजने की आवाज सुनाई दी, तो इमरान तेजी से मुड़कर उस कमरे में दाखिल हुआ और उसने रिसीवर उठा लिया। यस, इमरान ने तेज लहजे में कहा। जुआना बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से जुआना की आवाज सुनाई दी। ठीक है, वापस आ जाओ, इमरान ने कहा और रिसीवर रख के उसने फोन पिस उठाया और उसे उलट पलट कर देखने लगा, लेकिन वो आम सा फोन था। इमरान ने उसे गौर से देखा और फिर वापस मेज पर रख दिया। उसकी नजरें तार के साथ साथ दीवार में नस सॉकेट की तरफ जा रही थी, और फिर इमरान ने आगे बढ़कर इस सॉकेट को चेक करना शुरू कर दिया। उसने अपने नाखूनों में मौजूद मखसूस ब्लेड्स को बाहर निकालकर उनकी मदद से सॉकेट के पेच खोले और फिर गौर से उसके साफ देखने लगा, लेकिन वो भी बिल्कुल सादा ही था। इमरान ने बेख्तियार तवील सांस लेकर सॉकेट को दोबारा बंद कर दिया और फिर उठकर कमरे से बाहर आ गया। जुआना वापस आ चुका था। तुम यहीं रुको, मैं इस कोठी को अच्छी तरह चेक कर लूं, इमरान ने कहा तो जुआना ने इस बात में सर हिला दिया। इमरान ने कोठी के एक एक हिस्से की अच्छी तरह चेकिंग की, लेकिन ये आम सी कोठी थी। न इसमें कोई खुफिया तहखाना था और न ही खुफिया रास्ता या सुरंग। थोड़ी देर बाद इमरान वापस आ गया। अब चले यहाँ से, ये मामला भी दुरुस्त साबित नहीं हुआ, कुछ और सोचते हैं, इमरान ने कहा। इस आदमी का क्या करना है, गोली मार दूं? जुआना ने कहा। अरे नहीं, बेकसूर आदमी है, उसे बेहोश करके इसकी रस्सियां खोल दो और बस, इमरान ने कहा और बरामदे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद जुआना वापस आ गया तो वो दोनों अब भी रास्ते से बाहर आ गए। इमरान ने बाहर से दरवाजे को लॉक कर दिया और फिर वो दोनों इस पार्किंग की तरफ बढ़ गए जहाँ उनकी कार मौजूद थी। इमरान की पेशानी पर ग्रामोफोन के रिकॉर्ड की तरह शिकनों का जाल फैला हुआ था, जबकि जुआना खामोश था। उसे एहसास हो रहा था कि मिशन ऐसा उलझ गया है कि अब इसका कोई प्लस पॉइंट ही सामने नहीं आ रहा, लेकिन जाहिर है इमरान की मौजूदगी में उसे कुछ सोचने की जरूरत ही ना थी, इसलिए वो बस खामोशी से इमरान के पीछे चलता हुआ आगे बढ़ा चला जा रहा था। किंग सलमान अपने ऑफिस में बैठा फोन सुनने में मसरूफ था कि मेज पर पड़े हुए सुर्ख रंग के फोन की घंटी बज उठी, तो किंग सलमान ने चौंक कर इस सुर्ख रंग के फोन को देखा और फिर हाथ बढ़ाकर उसका रिसीवर उठा लिया। यस, किंग सलमान ने गुर्राते हुए कहा। थॉमस बोल रहा हूँ किंग, ई रूम से, दूसरी तरफ से एक मुअद्दबान आवाज सुनाई दी। क्या हुआ है, कोई खास बात? किंग सलमान ने इसी तरह गुर्राते हुए कहा। शायद उसके बात करने का अंदाज यही था। किंग, क्लूलैंड कॉलोनी के स्पेशल स्पॉट पर 2 अफराद पहुंचे हैं, इनमें से एक मकामी और दूसरा हबशी था। जैसे ही वो स्पेशल स्पॉट पर पहुंचे, यहाँ आलात ने उनके बारे में न सिर्फ खबर दे दी बल्कि वहाँ खुफिया कैमरे भी ऑन हो गए। इन दोनों ने चौकीदार को पकड़ लिया जो शराब के नशे में धुत था। उसे मार पीट कर होश में लाया गया, फिर उससे आपके बारे में पूछा, फिर उन्होंने फोन को भी चेक किया, लेकिन फोन आलात के ऑन होने की वजह से खुद ब खुद ऑफ हो चुका था। फिर उस मकामी आदमी ने हफशी को कोठी से बाहर भेजकर उससे उसी फोन नंबर पर कॉल करवाई। फिर वो फोन पीस को चेक कर रहा था, फिर उसने फोन सॉकेट को खोलकर चेक किया। उसके बाद चौकीदार को बेहोश करके वो वापस चले गए। दूसरी तरफ से कहा गया, ये कौन लोग हो सकते हैं और उन्हें स्पेशल स्पॉट और वहां के फोन नंबर का कैसे इल्म हुआ? किंग सलमान ने हैरत भरे लहजे में कहा। ये तो मालूम करना पड़ेगा किंग, दूसरी तरफ से कहा गया। इनकी तस्वीरें तैयार करा के पूरे लॉपैक में पहुंचा दो। जब इनका कोई अता पता चले तो इन्हें बेहोश करा के 3X में भिजवा देना। मैं 3X के रॉडल को हुक्म देता हूँ कि वो इनकी हड्डियों से भी असल मालूमात उगलवाए और फिर इनका खात्मा कर दे, किंग सलवान ने कहा और रिसीवर रख दिया। ये कौन लोग हो सकते हैं? किंग सलवान ने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर ख्याल आते ही वो चौंक पड़ा। ओह, ये वो लोग ना हो जिन्होंने रॉथ आइलैंड में सांगर के हेडक्वार्टर को तबाह किया है, और उनका इस नंबर तक पहुंचने का मतलब ये है कि वो अब मेरे पीछे हैं। वेरी बैड, किंग सलवान ने सोचने के अंदाज में बड़बड़ाते हुए कहा, और उसके साथ ही उसने मेज पर पड़े हुए सफेद रंग का फोन का रिसीवर उठाकर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। पीएसपी से राइट बोल रहा हूँ, एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। किंग सलवान फ्रॉम दिस एंड, किंग सलवान ने अपने मखसूस लहजे में गुर्राते हुए कहा। यस किंग, हुकुम फरमाइए, दूसरी तरफ से पहले से ज्यादा मुअद्दबाना लहजे में कहा गया। वो मुखबिर नौजवान शोकाई कैसा है? किंग सलवान ने पूछा। ओके किंग, दूसरी तरफ से कहा गया। उसने भागने की कोशिश तो नहीं की? किंग सलवान ने गुर्राते हुए कहा। नहीं, वो कैसे ऐसा कर सकता है? उसके दोनों पाँव में बेड़ियां हैं और एक आदमी 24 घंटे उसकी निगरानी करता है, खुफिया कैमरे भी ऑन रहते हैं, दूसरी तरफ से कहा गया। उसे वापस ले जाने वाले आजकल लॉपैक में घूमते फिर रहे हैं। मैंने उनके खात्मे के अहकाम दे दिए हैं, लेकिन हो सकता है कि ये किसी तरह बच बचा कर पीएसपी पहुंच जाए। तुमने वहां रेड अलर्ट रखना है, किंग ने कहा। यस यस किंग, हुक्म की तामील होगी, दूसरी तरफ से कहा गया, तो किंग ने एक झटके से रिसीवर रख दिया। फिर अचानक एक ख्याल के आते ही उसने एक बार फिर सफेद रंग के फोन का रिसीवर उठाया और यके बाद दीगरे दो नंबर प्रेस कर दिए। यस किंग, दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। मैडर्ट से बात कराओ, किंग ने गुर्राते हुए कहा। यस किंग, दूसरी तरफ से मुअद्दबाना लहजे में कहा गया और फिर लाइन पर खामोशी तारी हो गई। मैडर्ट बोल रहा हूँ किंग, चंद लम्हों बाद एक और मर्दाना आवाज सुनाई दी। तुम्हारा राब्ता जॉन विक्टर से है या नहीं? किंग ने पूछा। यस है किंग, वो दूसरी तरफ से कहा गया। वो क्या कर रहा है शोगरानी फार्मूले के सिलसिले में? हम उस मुखबिर की हिफाजत से तंग आ चुके हैं, किंग ने तेज और गुर्राते लहजे में कहा। जॉन विक्टर ने इससे राब्ता कर लिया है एक फर्जी नाम से, और इस साइंसदान ने जॉन विक्टर को बताया है कि वो मुसलसल फार्मूले पर काम कर रहा है। ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ते के अंदर वो मुकम्मल करके जॉन विक्टर को भिजवा देगा, दूसरी तरफ से कहा गया। चलो एक हफ्ता मजीद देख लेते हैं, लेकिन जॉन विक्टर से कह दो कि उसके बाद हम उस मुगवी को गोली मार कर उसकी लाश पेटर में फिकवा देंगे, किंग ने कहा। अगर एक हफ्ते बाद भी इस साइंसदान ने फार्मूला ना दिया तो ऐसा ही होगा कि उसके बेटे की लाश उसे भिजवा दी जाएगी और फिर उसकी बेटी को जो यूनिवर्सिटी में पढ़ती है अगवा कर लिया जाएगा, मैडर्ड ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। लेकिन इस लड़की को हम अपने पास नहीं रखेंगे, जॉन विक्टर को इसका कोई ना कोई इंतजाम करना पड़ेगा, किंग ने तेज लहजे में कहा। इसकी नौबत ही नहीं आएगी किंग, मैडर्ड ने जवाब देते हुए कहा। ओके, किंग ने कहा और उसने भी रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। अचानक उसे ख्याल आया तो उसने सियाह रंग के फोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। 3X से रॉडल बोल रहा हूँ, राब्ता कायम होते ही एक भारी सी मर्दाना आवाज सुनाई दी। किंग सलवान बोल रहा हूँ, किंग ने अपने मखसूस गुर्राते हुए लहजे में कहा। यस किंग, हुक्म, दूसरी तरफ से गोल लहजा नरम बनाने की कोशिश की गई, लेकिन इसमें तेजी और भारीपन वैसे ही मौजूद था। दो आदमियों को थाम और स्ट्रेस कर रहा है, इनमें से एक मुकामी और दूसरा हफ्शी है। जैसे ही वो ट्रेस हो वो इन्हें बेहोश करके 3X भिजवा दे। ये दोनों हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं और शायद ये वही लोग हैं जिन्होंने रॉथ जजीरे में सांगर के खिलाफ कार्रवाई की है। तुमने इन दोनों की हड्डियां तोड़कर इनसे सब कुछ उगलवाना है, लेकिन ख्याल रखना बताने से पहले उन्हें किसी सूरत मरना नहीं चाहिए। सब कुछ मालूम करके तुम इन्हें हलाक करके उनकी लाशें गटर में फिकवा देना, किंग ने कहा। यस किंग, हुकुम की तामील होगी, दूसरी तरफ से कहा गया। फिर तुमने मुझे तफसीली रिपोर्ट देनी है, बल्कि बेहतर है कि वो जो कुछ भी बताएं वो सब टेप कर लेना, फिर टेप मुझे भिजवा देना, किंग ने कहा। ऐसा ही होगा किंग, रोडल ने जवाब देते हुए कहा। ख्याल रखना, ये इंतहाई खतरनाक समझे जा रहे हैं, किंग ने रिसीवर रखते रखते फिर से कान से लगाते हुए कहा। ये चाहे कुछ भी हो किंग, रोडल के मुकाबले में ये एक लम्हे के लिए भी नहीं ठहर सकते, दूसरी तरफ से इंतहाई नफवत भरे लहजे में कहा गया। हाँ मुझे मालूम है, इसीलिए तो मैं उन्हें तुम्हारे पास भिजवा रहा हूँ, किंग ने कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया और फिर इत्मीनान भरे अंदाज में अपने दूसरे कामों में मसरूफ हो गया। मास्टर, अब आपने क्या सोचा है, जुआना ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। वो दोनों अभी क्लू लैंड कॉलोनी से वापस अपनी रिहाइशगाह पहुंचे थे। मुझे अल्लाह ताला की रहमत पर मुकम्मल यकीन है, वो कोई ना कोई रास्ता बहरहाल निकाल लेगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और जुआना ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। मेरा ख्याल है मास्टर कि मैं अंडर वर्ल्ड का राउंड लगाऊं, वहां से मैं किंग सलवान का खोज निकाल लूंगा, जुआना ने कहा। तजवीज तो तुम्हारी अच्छी है, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है, ज्यादा से ज्यादा चंद रोज। अगर ये चंद रोज भी गुजर गए तो यकीनन शोकाई को हलाक कर दिया जाएगा, क्योंकि शोगरानी साइंसदान ने फार्मूला मुकम्मल करके हुकूमत शोगरान के हवाले कर देना है, इसलिए हमने हर सूरत में इन चंद रोज गुजरने से पहले पहले शोकाई को जिंदा सलामत बरामद करना है, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है मास्टर, जैसे आप कहें, जुआना ने जवाब दिया। परेशान या मायूस होने से मामला सुधरा नहीं करते, परेशानी और यासियत इंसान को मजीद भटका देती है, अल्लाह ताला से दुआ और खुद अपनी कोशिश ही कामयाबी का असल नुस्खा है, इमरान ने कहा और उसके साथ ही वो बेख्तियार चौंक पड़ा क्योंकि उसे बाहर से टिक टिक की तेज आवाजें सुनाई दी। वो इन आवाजों को सुनकर कुर्सी से उठने ही लगा था कि उसे यूं महसूस हुआ जैसे पलक झपकने से भी कम अरसे में किसी ने उसके जहन पर सियाह कम्बल डाल दिया हो। उसके कानों में आखिरी आवाज जुआना की पड़ी थी, जिसने इंतहाई हैरत भरे अंदाज में मास्टर कहा था। फिर जिस तरह अचानक ही उसका जहन तारीख हुआ था, वैसे ही उसके जहन में रोशनी नमोदार हुई और चंद लम्हों बाद उसकी आंखें खुल चुकी थीं। आंखें खुलते ही उसने बेख्तियार उठने की कोशिश की, लेकिन दूसरे लम्हे वो देखकर हैरान रह गया कि वो अपनी रिहायशगाह के बजाय एक और बड़े कमरे में फौलादी कुर्सी पर बैठा था और उसके जिस्म के गिर्द फौलादी रॉड्स मौजूद थीं। इसने गर्दन घुमाई तो उसे कुछ फासले पर दूसरी कुर्सी पर जुआना बैठा नजर आया। उसकी गर्दन ढलकी हुई थी और उसके करीब एक देवहेकल आदमी खड़ा था जो जुआना के बाजू में इंजेक्शन लगा रहा था। इमरान समझ गया था कि उन्हें अगवा कर लिया गया है। उस टिक टिक की जो आवाजें उसने सुनी थी वो इंतहाई जूद असर बेहोश कर देने वाली गैस की कैप्सूल फटने की थी और इस बेहोशी के दौरान उन्हें यहाँ लाया गया और अब इंजेक्शन लगाकर उन्हें होश में लाया जा रहा है। यह आदमी जो जुआना के करीब इमरान की तरफ पुश्त किए खड़ा था वो वाकई देव हेकल था। वो जुआना से भी ज्यादा कवि हेकल नजर आ रहा था और उसका जिस्म भी ठोस और वर्जिशी था। वो सर से गंजा था और उसने जींस की पैंट और जींस की ही हाफ अस्तीनों वाली शर्ट पहनी थी, जिसमें उसके बाजुओं की मछलियां मुसलसल फड़कती हुई नजर आ रही थी। चंद लम्हों बाद उस आदमी ने इंजेक्शन की सुई जुआना के बाजू से निकाली और सिरिंज को एक तरफ फेंक कर वो मुड़ा तो इसका चेहरा पहली बार इमरान के सामने आया और उसका चेहरा भी उसके जिस्म की मुनासबत से चौड़ा था। उस पर सख्ती और दुरुस्तगी का तासुर भी नुमाया था। उसे देखकर फौरन महसूस होता था कि ये शख्स जिस्मानी तौर पर गोश्त पोस्त के बजाय पत्थर का बना हुआ है। बहुत खूब, बड़े अरसे बाद तुम जैसा आदमी देखने को मिला है, वरना आजकल तो लोग चिड़ियों की तरह नरमो नाजुक है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो वो आदमी बेख्तियार चौंक पड़ा। तुम ये बात कर रहे हो, हैरत है, तुम तो खुद छोटी चींटी से भी कमजोर हो, इस आदमी ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम्हारे मुकाबले तो वाकई में चींटी ही दिखाई देता हूँ, लेकिन चींटी को कमजोर समझना हिमाकत के सिवा और कुछ नहीं। तुमने वो मिसाल नहीं सुनी कि चींटी भी हाथी को हलाक कर सकती है, इमरान ने कहा तो वह आदमी बेख्तियार भारी आवाज में हंस पड़ा। ऐसी मिसालें तुम जैसे कमजोर आदमियों ने बनाई हुई है, इस आदमी ने कहा और उसके साथ ही वो जुआना की तरफ मुड़ गया जवाब होश में आ रहा था। तुम्हारा ये साथी भी खासा लहीम शहीम है, लेकिन मेरे मुकाबले में ये अभी बच्चा है, इस आदमी ने मुंह बनाते हुए कहा। इसका नाम जुआना है और तुम्हारा नाम क्या है, इमरान ने कहा। मेरा नाम रॉडल है, रॉडल, एक दुनिया मेरे नाम से कांपती है, इस आदमी ने जवाब दिया। तुम किंग सलवान के ही आदमी हो, इमरान ने कहा। हाँ मैं किंग सलवान का मातहत हूँ, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है, रॉडल ने कहा। मेरा नाम माइकल है, लॉर्ड माइकल, और ये मेरा बॉडीगार्ड है जुआना। हमें यहाँ कौन ले आया है? इमरान ने बड़े नर्म से लहजे में कहा। किंग के आदमी तुम्हें बेहोशी के आलम में यहाँ छोड़ गए हैं और मैंने तुम्हारी हड्डियां तोड़कर तुमसे सब कुछ उगलवाना है, टॉडल ने सख्त लहजे में कहा। वैसे भी उसकी आवाज भारी और लहजा बेहद सख्त था, लेकिन अब उसके लहजे में सख्ती का अंसर पहले से ज्यादा हो गया था। तुम मास्टर बैक्सन के बेटे तो नहीं हो? अचानक जोआना ने कहा। वो काफी देर से उसे गौर से देख रहा था और उसकी बात सुनकर रोडल बेख्तियार उछल पड़ा। उसके चेहरे पर पहली बार हैरत के तासुरात उभर आए। हाँ, मगर तुम मेरे बाप को कैसे जानते हो? रोडल ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। वो भी तुम्हारी तरह बढ़ चढ़कर दावे करने का आदी था, लेकिन ऊंट उस वक्त तक सबसे ऊंचा होता है जब तक पहाड़ी के नीचे ना आए, और तुम्हारा बाप मास्टर बैक्सन एक पहाड़ के नीचे आ गया था। तो तुम तो उस वक्त मैक्सिको में थे, जुआना ने मुसलसल बोलते हुए कहा। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? रोडल ने गौर से जुआना को देखते हुए कहा। मेरा नाम जुआना है और मेरा ताल्लुक मास्टर किलर से रहा है, जुआना ने मुस्कुराते हुए कहा। जुआना, मास्टर किलर? ओह, तो तुम वो हो जुआना जिसने मेरे बाप को हलाक किया था? ओह, मैंने कितना तलाश किया था तुम्हें ताकि तुम्हारी हड्डियां तोड़कर अपने बाप की मौत का इंतकाम ले सकूं, लेकिन तुम कहीं नहीं मिले और मास्टर किलर्स तंजीम भी खत्म हो गई। ओह गॉड, आज तुम सामने आ गए हो, रोडल ने कहा। अरे ये क्या, तुमने पुरानी दुश्मनियां निकाल ली हैं? छोड़ो पुरानी बातें, मौजूदा दौर की बातें करो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। उसका अंदाज ऐसे था जैसे दो दोस्तों के दरमियान हो जाने वाली तल्ख बात को रफा दफा करा रहा हो। पुरानी दुश्मनी? हाँ, आज वाकई पुरानी दुश्मनी चुकाने का मौका आ गया है। मैं तो जानता न जाने कब से तड़प रहा हूँ कि कहीं से तुम्हारा पता चले तो मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़कर अपने बाप का इंतकाम ले सकूं। आज मेरी दुआ कबूल हो गई है, रोडल ने मुसर्रत भरे लहजे में कहा। तुम्हारे बाप को मैंने मुआवजे के एवज हलाक नहीं किया था, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हारा बाप भी तुम्हारी तरह बढ़ चढ़कर बातें करने वाला था। उसने मुझे चैलेंज कर दिया और मैंने भी उसका चैलेंज कबूल कर लिया। ये चैलेंज फाइट थी, जोना ने मुंह बनाते हुए कहा। जो कुछ भी था, बहरहाल अब तुम्हें हर सूरत में मेरे हाथों मरना पड़ेगा, रोडल ने सर झटकते हुए कहा। चलो ये फाइट भी देख लेंगे, पहले ये बताओ कि तुम्हारा ये किंग सलमान कहाँ होता है, इमरान ने बड़े बेनियाजाना लहजे में कहा। खामोश रहो तुम, वरना पहले तुम्हारे सीने में गोली उतार दूंगा, अब अगर आवाज निकाली भी तो, रोडल ने यकलख्त इमरान को बुरी तरह झिड़कते हुए कहा। अरे अरे, इतना गुस्सा? जुआना से लड़ना है तो होश में लड़ो, वरना अपने बाप की तरह तुम भी गर्दन तोड़वा बैठोगे, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारी ये जरूरत कि तुम मास्टर को झिड़को? अब तक मैं तुम्हें बच्चा समझकर नजरअंदाज कर रहा था, लेकिन तुमने मास्टर से तोहीन आमेज लहजे में बात करके अपनी मौत मुकद्दर कर ली है, जुआना ने भी गुस्सीले लहजे में कहा। ये चिड़िया का बच्चा अगर तुम्हारा मास्टर है तो तुफ है तुम पर, रोडल ने फर्श पर थूकते हुए कहा। तो जुआना के चेहरे के उजलात बुरी तरह फड़फड़ाने लगे और आंखें सुर्ख हो गई थीं। अपने आप को कंट्रोल में रखो जुआना, ठंडे दिमाग से लड़ने वाला ममूला भी शहबाज पर भारी पड़ता है, इमरान ने जवाब जुआना की तरफ मुड़ते हुए सख्त लहजे में कहा। तो जुआना ने बेख्तियार होंठ भींच लिए। वाह, तुम वाकई इसके मास्टर हो, रोडल ने मुंह बनाते हुए कहा। और तुम भी सुन लो रोडल, लड़ाई भिड़ाई बाद में होती रहेगी, पहले चंद काम की बातें हो जाएं। ये बताओ कि क्या तुम्हें मालूम है कि शोगरान से लाया जाने वाला मुखवी कहाँ है, इमरान ने रोडल से मुखातिब होकर कहा। मुझे यहाँ के अलावा और कुछ नहीं मालूम, और तुम बातें बहुत करते हो, इसलिए तुम तो छुट्टी करो, बाकी बातें मैं जुआना की हड्डियां तोड़कर मालूम कर लूंगा, रोडल ने जेब से मशीन पिस्टल निकालते हुए कहा। लेकिन इससे पहले कि वो मशीन पिस्टल का रुख इमरान की तरफ करता, कटाक कटाक की आवाजों के साथ ही रॉड्स गायब हो गए और दूसरे लम्हे रोडल चीखता व उछल कर पुश्त के बल फर्श पर जा गिरा। इमरान जो किसी हद तक रोडल की नफसियात को समझने लगा था, काफी देर से टांग मोड़कर कुर्सी के अपवी पाए में मौजूद रॉड्स को ऑपरेट करने वाले बटन पर पैर रखे था। उसे मालूम था कि रोडल अपने बाप के इंतकाम में अंधा होकर किसी भी लम्हे इसको रास्ते की रुकावट समझकर इस पर फायर खोल सकता था, इसलिए वो ऐसी सिचुएशन के लिए पहले से तैयार था। जबकि उसे मालूम था कि जुआना ऐसा ना करेगा, क्योंकि वो जिस कुर्सी पर बैठा था उसके साथ दूसरी कुर्सी जुड़ी हुई थी और वो टांग नहीं मोड़ सकता था, और वैसे फौलादी रॉड्स को हाथ से तोड़ना नामुमकिन था, इसलिए जो कुछ करना था इमरान को ही करना था। फिर रॉड्स गायब होने पर रॉडल चौंका ही था कि इमरान ने चीते के से अंदाज में जकंद भरी और उसके दोनों पैर पूरी कुव्वत से रॉडल के चट्टान की तरह फैले हुए सीने पर पड़े और इस अचानक और जोरदार हमले ने रॉडल जैसे देव कामत और पथरीले आदमी के पैर जमीन से उखाड़ दिए और वो एक चीखता हुआ एक धमाके से पुश्त के बल फर्श पर जा गिरा। मशीन पिस्टल भी उसके हाथ से निकल गया जबकि इमरान ने उसे ने जर्ब लगाकर हवा में कलाबाजी खाई। उसके अंदाज में इस कदर फुर्ती थी कि जब तक रॉडल जो भारी जिस्म का मालिक होने के बावजूद इंतहाई फुर्तीला था इसलिए नीचे गिरते ही इसने बिजली की सी तेजी से कलाबाजी खाकर उठने की कोशिश की, लेकिन उसकी ये फुर्ती खुद उसके हक में मुजिल साबित हुई क्योंकि इमरान जिसे जैसे आदमी के मुकाबले से अंदाज में उठने की कोशिश रॉडल को इंतहाई महंगी पड़ी। जैसे ही कलाबाजी खाकर उठने की कोशिश की उसकी दोनों टांगे उसके सर के अकब में गईं। इमरान यकलक उछलकर उसकी कमान की तरह मुड़ी हुई पुश्त पर गिरा और उसकी कमर से कटाक की जोरदार आवाज के साथ ही रॉडल के मुंह से एक करबनाक चीख निकली और इमरान तो उछलकर एक तरफ जा खड़ा हुआ जबकि रॉडल पहलू के बल जमीन पर गिरा और उसके दोनों बाजू इस तरह इधर उधर लहराने लगे जैसे कोई अंधा हवा में लाठियां चला रहा हो जबकि उसका निचला धड़ हरकत करने से माजूर हो चुका था। इमरान ने इसी हालत में छोड़कर आगे बढ़कर कुर्सियों के अकब में जाकर उसने जुआना की कुर्सी के अकबी पाए में मौजूद बटन को प्रेस कर दिया। उसके साथ ही कटाक कटाक की आवाजों के साथ ही जुआना के जिस्म के गिर्द मौजूद रॉड्स गायब हो गए और जुआना उछलकर खड़ा हो गया। पार्ट सिक्स यहाँ इख्तिताम पजीर होता है।